आज की बात।
श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे, हमारे साथ रहें। श्रोताओं, भारत में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन चुका है और मेरा भारत महान में विश्वास रखने वालों के लिए निश्चित रूप से पिछले महीने की वो सर्वे रिपोर्ट चिंता की बात होगी जिसमें महिलाओं के लिए भारत को सबसे अधिक खतरनाक देश बताया गया है। सीरिया और अफगानिस्तान से भी अधिक खतरनाक, जहां युद्ध जारी है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये वैश्विक सर्वेक्षण थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन ने किया है, जिसने 5 महाद्वीपों में लैंगिक विशेषज्ञों से बात करके लिस्ट तैयार की है। इस क्रम में भारत को पहले, युद्धग्रस्त अफगानिस्तान को दूसरे और सीरिया को तीसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि सोमालिया को चौथे और सऊदी अरब को 5वें स्थान पर रखा गया है। महिलाओं के खिलाफ खतरनाक देशों की सूची में शीर्ष 10 में से एकमात्र पश्चिमी देश अमेरिका है, जबकि 9 देश एशिया से हैं। फाउंडेशन ने 7 साल पहले 2011 में भी ऐसा ही सर्वेक्षण कराया था, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से भारत को 4थे स्थान पर रखा गया था। तब अफगानिस्तान पहले, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दूसरे, पाकिस्तान तीसरे और सोमालिया 5वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत सबको पीछे छोड़ते हुए 1ले स्थान पर पहुंच गया है। ताज़ा सर्वेक्षण में भारत को महिलाओं के लिए मानव तस्करी, जबरन यौन दास्ता, घरेलू कामकाज, जबरिया विवाह और कन्या भ्रूण हत्या के लिहाज से खतरनाक बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कई रीति रिवाजों और परंपराओं का असर भी भारत में महिलाओं पर पड़ता है। भारत सरकार ने इस पर सिर्फ ये कहा है कि रिपोर्टें बढ़ गई हैं, इसलिए मामले बढ़े हैं।
और ये जो रिपोर्ट आई है, मैं भी खुद पढ़ के और देख करके खुद आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत एक पॉजिटिव साइन भी है, क्योंकि क्राइम रेशियो बढ़ा है, ये हमारे लिए दुखद है, लेकिन साइन इसलिए है क्योंकि जहां हम जिनसे तुलना करके हम 1ले स्थान पर आए हैं, उन देशों की हालत को देखिए, क्या वहां लोकतंत्र है? हम कम से कम ये बातें तो कह सकते हैं ना कि आज कल जो महिलाएं जिनको जिनके ऊपर अत्याचार होता था, वो घर से बाहर निकल करके अपने इन अपने ऊपर हुए अपराधों के बारे में संज्ञान लेना भी नहीं चाहती थी और किसी को जानकारी भी नहीं देती थी।
NDTV के कार्यक्रम में कांग्रेस की प्रवक्ता खुशबू सुंदर ने इस पर चिंता प्रकट की।
पिछले मतलब 7 सालों में 12% हम कैसे आगे बढ़े हैं। आज हिंदुस्तान जो हम कहते हैं कि एक ग्लोबल मैप पे अव्वल नंबर पे होना चाहिए, आज बिल्कुल ही गलत रीजंस का के लिए अव्वल नंबर पे है। वो बहुत ही शर्मनाक बात है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें बहुत शर्म आती है कहते हुए कि हम अव्वल नंबर पे, वो भी जो वार टोन कंट्रीज हैं, सीरिया हो या ये बात बिल्कुल गलत है अगर हम कहेंगे कि आज औरतें बाहर आके बात करनी है। लेकिन जो रिपोर्ट है ये आज की और कल की रिपोर्ट नहीं है, ये पिछले 4 साल की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में हमें बिल्कुल सही पता लगता है कि आज औरतें, जो मी टू मूवमेंट की भी जो बात होती है जो इस कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट में है, वो भी अभी की है। लेकिन ये जो बातें सारी हम देख रहे हैं कि औरतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, और ये सिर्फ सेक्सुअल अटैक्स ही नहीं, हम देखते हैं कि पिछले साल से इस साल में 39,000 रिपोर्ट्स, मतलब एक दिन में 100 के भी ऊपर सेक्सुअल रिपोर्ट्स हो रहे हैं।
खुशबू सुंदर, हालांकि भारत में सरकार के पक्ष का ये कहना है कि रिपोर्टिंग बढ़ गई है इसलिए घटनाएं ज़्यादा लगती हैं, और ये मानने पर वो तैयार नहीं है कि वास्तविक रूप में घटनाएं बढ़ी हैं। और ये भी हो सकता है कि खुशबू सुंदर चूंकि कांग्रेस की प्रवक्ता है इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें की हैं, किंतु हालिया दिनों में एक और दिल दहला देने वाली घटना घटी जिससे इस रिपोर्ट की पुष्टि होती है। घटना इस प्रकार से है कि बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में स्थित एक बालिका गृह में रह रही 42 लड़कियों में से 34 के साथ बलात्कार होने की पुष्टि हुई है। इससे पहले यहां रह रही 29 लड़कियों से बलात्कार की पुष्टि हुई थी। बलात्कार की शिकार हुई लड़कियों में से कुछ 7 से 13 साल के बीच के हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बलात्कार से पहले लड़कियों को मिर्गी का इंजेक्शन देकर उन्हें बेहोश किया जाता था। भारत में सत्ता पक्ष ने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट पर तरह तरह के बहाने पेश किए, लेकिन इस घटना पर मीडिया ने सरकार का साथ दिया और मौन साध लिया। द वायर से एक बातचीत में इस घटना पर मीडिया के मौन के बारे में बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शीतल सिंह कहते हैं,
उसकी एक वजह यह है कि 19 में लोकसभा के चुनाव है और हम पिछले 5 सालों में, अब 4 साल इस सरकार के हो गए हैं, हम ये पा रहे हैं कि मीडिया एकदम एकपक्षीय है। उसका लगभग 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 99% हिस्सा सरकार के पक्ष में विपक्ष के खिलाफ काम करने जैसा काम करता है। लेकिन इस मामले में एक दूसरी बात भी है। इस मामले में इसके अलावा कि चुनाव में जो लोग वहाँ सरकार है बिहार में, वो इस समय गठबंधन की सरकार हो गई, नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी शामिल है, वो तो बचाना वो चाहते ही हैं। लेकिन हमारा जो सामाजिक संरचना है हमारे देश की, उसमें उत्तर भारत में खासकर जहाँ से हम परिचित हैं, मैं जानता हूँ इस बात को कि ये जो मीडिया है, जुडिशरी है और इवन सरकारी तंत्र, ये बहुत बुरी तरह से जातिवादी आकंठ में डूबा हुआ है। और अगर यही बात आज वहाँ लालू यादव की सरकार होती और कहीं अभियुक्त कोई पिछड़ी या दलित या मुस्लिम उसमें से होता, तो इस पूरे देश में आग लग गई होती। कैंडल मार्च बहुत छोटी चीज़, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता, हम इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते कि देश किस तरह से उसको रिएक्ट कर रहा होता। लेकिन वही देश इतनी बड़ी घटना पर, जिसमें 34 बच्चियाँ जो 7 साल से शुरू होती हैं और 14-15 साल पर जिनकी मैक्सिमम उम्र है, ये सब एक शहर में चल रहा था और चला कौन रहा था।
पत्रकार शीतल सिंह, इस बारे में पत्रकार अलका रंजन भी इसी वार्ता में कहती हैं,
ठीक है, शायद इनकी पकड़ पैठ बहुत ज़्यादा है ब्रजेश ठाकुर की, और शायद उन्होंने जो लोकल मीडिया को खरीद रखा है, जो पॉलिटिशियंस है उन तक इनकी पहुंच है, और वो शायद वो इस चीज़ को, लेकिन अगर ये बात जब बाहर निकल के आ रही थी तब भी नेशनल मीडिया सजग हो सकता था, उसके बारे में जानकारी और हासिल कर सकता था। यहाँ से लोग जाकर के, आई डोंट थिंक कि कोई रिपोर्टर दिल्ली से मुजफ्फरपुर तक गया हो या पटना तक भी गया हो इस खबर की तह तक पहुँचने के लिए। तो मेरा डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से है क्योंकि शायद मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से ज़्यादा है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन सिविल सोसाइटी से भी है। इनफैक्ट मैं जब देख रही थी कि भाई व्हाट इज़ इट दैट मेक्स अ ट्रेंडिंग पोस्ट, कुछ मुद्दे क्यों वायरल हो जाते हैं, और इस तरह का मुद्दा क्या वजह है, क्यों ये लड़कियां किसी की नहीं हैं, कोई उन्हें अपनाना नहीं चाहता है।
भारत में घटने वाली इस घटना पर विभिन्न हलकों में चिंता प्रकट की। इस बारे में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने आज तक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कुछ ध्यान योग बातें कहीं।
ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। मेरी अपनी बेटियां हैं और मैं पैनल के लोगों से भी चाहूंगा कि इस मसले पर जाति नजरिए से देखिए कि ये हमारे आपके परिवार की बच्ची है, मेरी बेटी है, मेरी बहन हो सकती थी, क्योंकि बिहार के बारे में और कुछ भी हो, ये 40 निर्भया के साथ जो हुआ है, मैंने सदन में भी इस बात की चर्चा की थी, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं, लेकिन इस तरह की शर्मसार करने वाली घटनाएं मेरे बिहार की कभी डोमिनेंट छवि नहीं थी, कभी इस तरह की छवियां नहीं रही थी। मैं जरा एक टाइमलाइन आपको बताता हूं, क्योंकि सोशल ऑडिट से मैं वाकिफ हूं, टाटा इंस्टीट्यूट की तरह मेरा भी एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, मेरा ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल ऑडिट होती है अप्रैल के महीने में, जमा कर दी जाती है। कहां जमा होती है? समाज कल्याण विभाग में। कौन है मंत्री? हम सब जानते हैं। किनका नाम आ रहा? हम सब जानते हैं। 28 मई यानी कि तकरीबन पौने दो महीने बाद उसमें एफआईआर होती है। एफआईआर के बाद सेम डे उसी संस्था को, सेवा संकल्प को, 40 लाख रुपए मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना में दिए जाते हैं। मेरा सिर्फ मतलब यह है, ये जो रेटोरिकल आर्ग्यूमेंट है कि कानून अपना काम करेगा, ये जो बच्चियों की टेस्टिमनी अगर ध्यान से हम में से कोई सुन ले तो मैं समझता हूं कि पूरा समाज शर्म से यह कह उठेगा कि बच्चियां हम तुम्हारी गुनहगार है। मैं सत्ता प्रतिष्ठान को क्या सवाल करूं? बिहार में कोई इकबाल नहीं है, कहीं मौजूदगी नहीं है। मेरा सवाल अपने समाज से भी है, ये कोढ़ की तरह हम सबको घस रहा है। और हम सब हैं कि बिजनेस एज यूजुअल, मुझे बेहद खुशी है कि आज आप बहस कर रही हैं, मुझे ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं होना चाहिए। एक निर्भया ने इस मुल्क की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। ये 40 बच्चियां हम में से किसी को माफ नहीं करेंगी अगर इनको हक, इनका इनका इनको न्याय नहीं मिलता है। हम क्या न्याय दे रहे हैं? जो व्यक्ति इसमें सरीके गुनाह है वो रसूख के चलते कहते हैं, अधिकारी तक एनोनिमिटी के सवाल के आधार पर कहते हैं कि आदमी सबको देख लेने की धमकी दिया करता था। ये ऑर्गेनाइज सिंडिकेट बिना सत्ता प्रतिष्ठान के मदद के नहीं चल सकता है। मेरा सिर्फ इनिशियल ऑब्जर्वेशन यही है। मेरा मानना है कि सीबीआई ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हो, क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा रसूखदार समझता है, ये समझता है कि सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देगा, विटनेस हॉस्टाइल कर देगा, और ना जाने इन बच्चियों पे और कितनी बेरहमी होगी।
श्रोताओं, अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि संस्कृति और धर्म की दृष्टि से दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ के लोग भारतवासियों से अधिक देवियों की पूजा करते हों, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को सम्मान से देवी जी बुलाया जाता है, किंतु अब वही भारत महिलाओं के लिए सबसे अधिक असुरक्षित देश बन चुका है। ये भारतवासियों के लिए शर्म ही नहीं बल्कि चिंता का विषय भी है, क्योंकि उसी भारत में उनकी बहू बेटियाँ रहती हैं।